कार्यक्रम। प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व कि आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आइए श्रोता, इसी सुंदर गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके चौथे अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। आज का हमारा अध्ययन विषय है मिट्टी के पात्रों में धन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मसीह यीशु की सेवकाई में कष्ट सहने में परमेश्वर की शांति है। प्रथम अध्याय में हमने जीवन के कार्यक्रमों में परमेश्वर की शांति को देखा। दूसरे अध्याय में पाप में गिर जाने वाले विश्वासी जन को वापस फेर लाने में परमेश्वर की शांति का कार्य हमने देखा। तीसरे अध्याय में हमने मसीह यीशु की महान सेवा में परमेश्वर की शांति के कार्य को देखा। और तब चौथे अध्याय में हम मसीह के लिए दुख उठाने में परमेश्वर की शांति के विषय में अध्ययन करेंगे। सो आइए परमेश्वर के वचन से देखें कि परमेश्वर पिताजी आज हमें कौन सा नया सत्य बताना चाहते हैं। सो हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए दूसरा कुरिन्थियों का चौथा अध्याय 1-6 पद। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 1-6, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम साहस नहीं खोते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है और धूर्तता से नहीं चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह पर्दा उनके लिए पड़ा है जिनका विनाश हो रहा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। हम तो अपना नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि यीशु मसीह के कारण तुम्हारे दास हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वही है जो हमारे हृदयों में चमकता है कि हमें मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति दे। मित्रवर, सुसमाचार की सेवा एक तेजोमय सेवा है, ये एक महिमा युक्त सेवा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो संदेश दिया है वो मनुष्य की कल्पना शक्ति से बाहर है। ये वे बातें हैं जिन्हें मनुष्य विचार में नहीं ला सकता, और इसलिए जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो प्रत्येक मनुष्य इस अनुग्रह के सुसमाचार को समझ नहीं सकता। जो आत्मिक योजना और कार्यक्रम सुसमाचार प्रस्तुत करता है वो किसी भी मनुष्य के सोच विचार में आना असंभव है। मैं नहीं समझ सकता कि परमेश्वर ने मुझे इस महान सेवकाई को करने की अनुमति क्यों दी। मित्र, परमेश्वर ने अपनी दया के फलस्वरूप मुझे ये सेवकाई करने की आज्ञा दी है, और परमेश्वर की दया से ही मुझे ये अनुमति मिली है कि रेडियो के माध्यम से पवित्र बाइबल के विषय में शिक्षा दे सकूं, क्योंकि मुझसे योग्य व अच्छे व्यक्ति अनेक हैं, परंतु परमेश्वर की दया मुझ पर हुई इसलिए उसने मुझसे ये सेवा करने को कहा और मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया और मेरे हाथों में ये सेवा सौंप दी। अब क्योंकि ये सेवा परमेश्वर की दया के द्वारा हमें सौंपी गई है इसलिए हम साहस नहीं खोते, हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हम इसमें आनंदित और मग्न होते हैं। अब एक प्रश्न मस्तिष्क में उत्पन्न होता है कि सुसमाचार की सेवा में कौन सी ऐसी बात है जो अत्यंत रुचिकर व अनोखी है। श्रोता, मैं इस अनुग्रह के सुसमाचार तथा संसार के धर्म के मध्य अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं, और ये बात कोई गंभीर नहीं वरन साधारण शब्दों ही में व्यक्त की जा सकती है। मित्र, विश्व के समस्त धर्म मनुष्य से कहते हैं करो करो करो, परंतु सुसमाचार कहता है कार्य पूर्ण हुआ, तमाम हुआ, पूरा हुआ। क्रूस से मसीह के अंतिम शब्द थे पूरा हुआ। सुसमाचार मानव को यह बताता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूर्ण कर दिया है, उसने मेरे मोक्ष के कार्य को पूर्ण कर दिया है। अब मानव को उस पर विश्वास लाना, मानव को परमेश्वर पर भरोसा करना है। मित्र, केवल विश्वास ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और यह पूर्णता असंभव है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सुसमाचार और संसार के धर्मों में हो चुका और करो का अंतर है, यही इस अनुग्रह के सुसमाचार का अनोखापन है। तब दूसरे पद में प्रेरित कहते हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है और दूतता से नहीं चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। प्रिय मित्र, मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाप की मृत्यु अर्थात दंड से बचाए गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर की संतान होने का आदर प्राप्त हुआ है। सांसारिक दृष्टि से हम चार वर्गों में रख दिए गए हैं। हो सकता है आप और मैं शूद्र या वैश्य हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टिकर्ता पवित्र व जीवित सच्चे परमेश्वर की संतान बना लिए गए हैं। हमें कलीसिया अर्थात मसीह का बदन व उसकी दुल्हन कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे पास अनंत जीवन की आशा है, और इसलिए सुसमाचार को हमारे भीतर निवास करना चाहिए अर्थात हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। हमें धोखे धड़ी के कामों को त्याग देना चाहिए, हमें लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग देना चाहिए। यही सुसमाचार का व्यवहारिक रूप है। चौथे पद में प्रेरित कहते हैं, उन विश्वासियों की बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। अब यहां पर एक वाक्यांश आया है, इस युग का ईश्वर। यह अनुवाद अच्छा है, उचित है, क्योंकि मैं ये सुनना पसंद नहीं करता कि शैतान इस संसार का परमेश्वर कहलाए, क्योंकि यह संसार सदैव परमेश्वर का है। यद्यपि इस पर पाप का साम्राज्य है, परंतु शैतान इस युग का ईश्वर है, क्योंकि वही इसका संचालन कर रहा है। वो इस युग का ईश्वर है क्योंकि इस युग की समाप्ति पर परमेश्वर पिताजी स्वयं अपने राज्य को स्थापित करेंगे, और वही राज्य अनंत काल का राज्य होगा। किंतु इस युग के लोगों की बुद्धि पर शैतान का अधिकार है। उसने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है ताकि वे परमेश्वर के प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह को अर्थात मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। तब अग्रिम पदों में प्रेरित बताते हैं, सातवें पद में वो कहते हैं, परंतु हम मिट्टी के पात्रों में ये धन इसलिए रखा हुआ है कि सामर्थ्य की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। अब यहाँ प्रेरित पौलुस अध्याय के मुख्य विषय पर आते हैं। हमारे अध्ययन का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में क्लेशों व संकटों के बीच परमेश्वर की शांति है। हमने तीसरे और चौथे पदों में देखा कि एक सामर्थ्य है जो मानव के मन पर पर्दा डाले रहती है। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो स्मरण रखिए, एक विपरीत शक्ति है जो लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, जिससे वे सुसमाचार को ना समझ सकें। और छठे पद में प्रेरित पौलुस सृष्टि के आरंभ की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं, और वह कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि अंधकार में ज्योति चमके, वही परमेश्वर हमारे हृदयों में चमकता है, अर्थात ज्योति का पिता। वो इसलिए हमारे हृदयों में चमकता है कि मसीह के मुखमंडल में परमेश्वर के ज्ञान की ज्योति हमें प्रदान करे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के ऊपर मंडराता है, और वही आत्मा मनुष्य के हृदय को कायल करता है, और तब वह उसे नया बना देता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य नया जन्म प्राप्त करता है। तब प्रभु यीशु मसीह का यह कथन पूर्ण होता है कि जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और जब इस प्रकार हमारा नया जन्म होता है, तब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, उनके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हमारे हृदयों में चमकता है। फिर भी सातवें पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम मिट्टी के पात्र हैं। हमारा अस्तित्व यह है कि हम धूलि हैं, परंतु इन मिट्टी के पात्रों में परमेश्वर की महिमा का ज्ञान सुरक्षित है। पौलुस कहते हैं कि ये मिट्टी के पात्र बड़े दुर्बल हैं, और यहां पौलुस ऐसे ही मिट्टी के दुर्बल पात्रों से अपनी तुलना कर रहे हैं, परंतु वो एक रहस्य बताते हैं कि मिट्टी के इन दुर्बल पात्रों में धन रखा हुआ है। प्रिय मित्र, ये धन क्या है? ये धन है तेजोमय सुसमाचार। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम अपना नहीं बल्कि यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और हम यीशु के कारण तुम्हारे दास हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु हैं, और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ही सुसमाचार है। आठवें और नवें पदों में वो बताते हैं, हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं परंतु मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। अब यहां पर इन पदों में प्रेरित पौलुस एक तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, एक ओर संसार का व्यवहार, दूसरी ओर परमेश्वर का अनुग्रह। स्मरण रहे, जो सामर्थ्य सुसमाचार सुनाने वालों की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, वही सामर्थ्य सुसमाचार सुनाने वाले के जीवन में संकट, क्लेश व निराशा उत्पन्न करती है। परंतु परमेश्वर अपने सेवकों को कभी भी नहीं त्यागता। किसी भी व्यक्ति का मापदंड आप उसके शत्रुओं की संख्या देखकर कर सकते हैं। यदि हम सुसमाचार के सच्चे और स्पष्ट प्रचारक हैं, तो हमारे शत्रुओं की संख्या हमारे मित्रों से अधिक होगी। किंतु फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसा पौलुस कहते हैं, कि क्लेश, निराशा, सताओ, त्यागा जाना, गिराया जाना, ये सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर हमको समस्त परिस्थितियों में स्थिर रखता है, हम नष्ट नहीं होते। तो दसवें पद में वो कहते हैं, हम यीशु की मृत्यु को सदा अपने देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। मित्रवर, आज संसार में प्रभु यीशु मसीह का स्थान स्वीकार करना एक अद्भुत अनुभव है। मसीह का स्थान स्वीकार करने का तात्पर्य है मसीह के दुखों का अनुभव करना। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। और यहां वो कहते हैं कि हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस बताते हैं, जैसा कि लिखा है, कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान समझे जाते हैं। और कुरंथियों की पत्री में उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को जुलूस के अंत में रखा है, उनके समान जिन पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी हो। और यहां वो स्पष्ट करते हैं कि हम यीशु की मृत्यु को सदा अपने देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। मित्रवर, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपना नहीं बनाते, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने मसीह के दुखों के अनुभव को इन शब्दों में व्यक्त किया कि अब मैं नहीं, वरन मसीह मुझ में जीवित है। प्रिय मित्र, मसीह के दुखों का अनुभव करना एक महान अनुभव है, ये बड़ा अद्भुत अनुभव है, और प्रत्येक सेवक को, प्रत्येक प्रचारक को यह अनुभव करना चाहिए, ताकि उसके दुखों के द्वारा बहुत से जीवन प्रभु के समीप लाए जाए, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु में हमारे लिए अनंत जीवन है। तब 11 से 14 पदों में यहां पर बताया गया है, हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। और इस प्रकार मृत्यु तो हम में, परंतु जीवन तुम में कार्य करता है। लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं, तथा ये जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु के साथ जिलाएगा और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सम्मुख उपस्थित करेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम इस दुर्बल जीवन के द्वारा मसीह के जीवन को प्रकट करते हैं। पौलुस यहां पर जो बात हमारे समक्ष रख रहे हैं वो है, हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। वो ये कहना चाहते हैं कि इस दुर्बल जीवन के द्वारा मसीह के जीवन को हम प्रकट करना चाहते हैं। हम साहस के साथ मृत्यु का सामना करते हैं, और जब हम दुर्बल दिखाई देते हैं उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करते हैं। और इन पदों से स्पष्ट होता है कि प्रेरित पौलुस मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह हमारे सामने जीवन की बात करते हैं, वो 14वें पद में कहते हैं, हम ये जानते हैं कि जिसने यीशु को अर्थात प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु के साथ जिलाएगा और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सम्मुख उपस्थित करेगा। तो इस प्रकार से वो मृत्यु के परे देखते हैं, वो मृत्यु के पार एक जीवन को देखते हैं, और इसलिए अगले अध्याय में वह प्रवेश मसीह के लिए प्राण देने में परमेश्वर की शांति के विषय में चर्चा करेंगे। वो यहाँ बताते हैं कि वह जीवित प्रवेश मसीह के साथ संयुक्त हो गए हैं और इसलिए वह शेष संसार के लिए मर चुके हैं। संसार के लिए मरने का अर्थ यह है कि वह अब सांसारिक जीवन नहीं जी रहे हैं, वो सांसारिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। और मेरे प्रिय मित्र, मसीह यीशु अर्थात जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ संयुक्त हो जाने का अर्थ यही है, अर्थात संसार के लिए मर जाना। अब यहां प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि जिसने अर्थात परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जीवित किया, वही हमें भी जिलाएगा। श्रोता, ये पुनरुत्थान की आशा है, अर्थात ये जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित है। अब 15 और 16 पदों में वो कहते हैं, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, कि अनुग्रह जो अधिक से अधिक लोगों में फैलता जा रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की वृद्धि का कारण बन सके। इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। मित्र, अब यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए हम साहस नहीं खोते, वो यहाँ प्रथम पद के कथन की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जहाँ लिखा है इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली है तो हम साहस नहीं खोते। मित्र, 4 से 8 से 14 पदों में वो बताते हैं कि मैं क्यों प्रभु की इस सेवा को हर्ष के साथ करता हूँ, और अग्रिम पदों में प्रेरित पुनः एक तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व जीवन की कठोर परिस्थितियों, क्लेश व संकटों के कारण क्षय अर्थात दुर्बल होता जा रहा है, परंतु आंतरिक मनुष्यत्व नया बनता जा रहा है, और ये आत्मिक परिपक्वता की ओर संकेत है। आंतरिक मनुष्यत्व को नया बनाने में पुनरुत्थान की ज्वाला का उल्लेखनीय कार्य है। मित्रवर, ये सत्य है कि भीतरी परिपक्वता बाहरी क्षय के पश्चात ही आती है। जब हम बाहरी रूप से कमजोर होते जाते हैं, हमारा रूप बिगड़ता जाता है, हम भीतरी रूप से परिपक्व होते जाते हैं, और भीतरी परिपक्वता अंत में मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करती है। ये पवित्र बाइबल की सत्यता है, वास्तविकता है। 17वें पद में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का ये हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य हैं, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक हैं, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। मित्र, यदि आप तुलना करें तो अनंतकालीन अर्थात चिरस्थायी महिमा उन क्लेशों की तुलना में महान है। दूसरे शब्दों में, ये क्लेश उस अनंतकालीन महिमा के समक्ष कुछ नहीं है। आप इस ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्तमान क्लेश उस चिरस्थायी महिमा की तुलना में कोई महत्व नहीं रखते। रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के 18वें पद में प्रेरित बताते हैं कि वर्तमान समय के दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है उचित नहीं है। 18वें पद में वो बताते हैं कि जो दिखाई देता है, अर्थात वे वस्तुएं जो वर्तमान में हमारे समक्ष हैं, ये वर्तमान परिस्थितियां व क्लेश हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं, और यद्यपि ये व्याकुल और दुखी व पीड़ित करने वाले हैं, परंतु ये सब अस्थायी हैं, क्षणभंगुर हैं, और इन वर्तमान बातों पर दृष्टि लगाना अपने जीवन में निराशा तथा तनाव उत्पन्न करना है। ये बातें केवल निराशा ही उत्पन्न करती हैं। इब्रानियों की पत्री का लेखक बताता है कि हमें चाहिए कि हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, क्योंकि जो अदृश्य वस्तुएं हैं वे चिरस्थाई हैं, और जो चिरस्थाई महिमा प्रभु में हमें मिलनी है उसकी तुलना में वर्तमान क्लेशों का कोई महत्व नहीं। इसलिए हम संसार की बातों पर से दृष्टि हटाकर उसी महिमा की ओर दृष्टि लगाएं जो चिरस्थाई है। मसीह का पुनरुत्थान अर्थात उनका मृतकों में से जीवित होकर स्वर्ग को जाना सभी बातों का आधार है। अभिनी वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद श्रोता। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।